नमस्कार भारत, 20 फरवरी मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। फ्लोरिडा में फायरिंग के बाद नरम पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बंदूकों से जुड़े नियमों में बदलाव के प्रति जताया समर्थन। पटना यूनिवर्सिटी से निकले बड़े नेता छात्र संघ चुनावों में छात्र राजनीति को क्यों नहीं दे रहे बढ़ावा।
ये सभी लोग जान रहे थे कि 74 मूवमेंट जो था वो स्टूडेंट मूवमेंट का था और वो एक बड़ी लीडरशिप दिया इंडिया को, एक चैलेंज करने की हैसियत रखी उस जमाने की सरकार को, तो वो फियर था, खतरा था अंदर में।
बताएंगे झारखंड के ताना भगतों के बारे में, जिन्होंने लगान माफी के लिए लड़ी 63 साल लंबी लड़ाई।
मतलब यह होला कि अंग्रेज यहाँ से चला जा, राजा महाराज यहाँ से चला जा, कि हम तोके टैक्स नहीं दे, ये हमार धरती पे थी।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गन कंट्रोल कानून में सुधार पर अपना समर्थन जताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने द्विदलीय विधेयक पर बात की है, जिसमें किसी को भी बंदूक खरीदने की इजाजत देने से पहले जांच प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव है। सीरिया के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि दमिश्क के बाहर पूर्वी गुटा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बीते 24 घंटे में सरकार के हमलों में दर्जनों नागरिकों की मौत हुई है। उनका कहना है कि हवाई और जमीनी हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया को नागरिकों पर बमबारी बंद करने को कहा है। सरकार द्वारा घेरे गए क्षेत्र में हमले बढ़े हैं। पूर्वी गुटा के एक शख्स मोयद ने बीबीसी को वहाँ का हाल बताया।
I cannot get out of my place to get them the goods for lunch.
खाने या अपने बच्चे का दूध लाने के लिए मैं अपनी जगह से बाहर नहीं जा सकता। ऐसी जगह पर एक पिता के लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त है। यहाँ मोर्टार और रॉकेटों की बारिश हो रही है। जब आप अपने बच्चों की आंखों में डर देखते हैं तो ये एक पिता के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये थे पूर्वी गुटा के एक नागरिक के शब्द। तुर्की के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर सीमाई प्रांत एफरिन में सीरियाई सरकार के सुरक्षा बल दाखिल होते हैं तो ये भयंकर घटना होगी। बेकिर बोजदा ने कहा कि हर मामले में तुर्की का आक्रमण एफरिन में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। तुर्की एफरिन प्रांत में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहा है। इससे पहले सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा था कि सरकार समर्थित बल जल्द ही एफरिन में जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वहीं कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG ने कहा है कि उनका सीरिया के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइली सरकार ने कहा है कि उसने मिस्र के साथ अरबों डॉलर की गैस डील की है। इसराइली कंपनी डेलेक ड्रिलिंग ने घोषणा की है कि यह 10 साल की 15 अरब डॉलर की डील है, जिसमें मिस्र को प्राकृतिक गैस मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह समझौता न केवल इसराइल की अर्थव्यवस्था को तेजी देगा बल्कि क्षेत्रीय रिश्तों को मजबूत करेगा। बहुत से लोग गैस की स्थिति को लेकर विश्वास नहीं करते थे। हम जान चुके थे कि यह हमारी सुरक्षा शक्ति और अर्थव्यवस्था का मजबूत करेगा, क्षेत्रीय संबंधों को भी मजबूत करेगा और यह हमारे देश के नागरिकों को मजबूत करेगा। ये थे इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि राजधानी तेहरान में दरवेश समुदाय के प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। ईरानी समाचार एजेंसी फास का कहना है कि गोनाबादी दरवेश समुदाय के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर बस चढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने खुद का वीडियो ऑनलाइन जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों ने उन पर हमला किया था। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि सूफी दरवेशों को ईरानी प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। रूसी माफिया गैंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रूसी सांसद व्लादिस्लाव रेजनिक समेत 18 संदिग्धों के खिलाफ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में केस शुरू हुआ है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गैंग के रूसी अर्थव्यवस्था, राजनीति, न्यायिक और पुलिस प्रशासन से संबंध थे। राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी के सदस्य रेजनिक ने कहा है कि वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आए हैं। उनकी सांसद बीवी भी इस केस में शामिल हैं, लेकिन कथित गैंग के नेताओं को रूस में माना जा रहा है। ब्रिटिश विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर को बाल शोषण करने पर न्यायालय ने 32 साल की जेल की सजा सुनाई है। मैथ्यू फाल्डर ने बर्मिंगम की कोर्ट में स्वीकार किया था कि उन्होंने 132 अपराध किए थे। इनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर करना, बच्चों के बलात्कार के लिए प्रोत्साहित करना और ब्लैकमेल करने जैसे अपराध शामिल हैं। 29 साल के फाल्डर को यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसराइल की एजेंसियों के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। पिछले हफ्ते फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में 17 छात्रों की जान गई थी, जिसके बाद गन कंट्रोल को लेकर छात्र सड़क पर उतरे थे। इस घटना के बाद अमेरिका में एक बार फिर बंदूक रखने के नियमों में बदलाव को लेकर बहस छिड़ गई है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियम बदलने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
फ्लोरिडा के एक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना पर छात्रों के इस तरह के गुस्से के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गन कंट्रोल कानून पर थोड़े पिघलते नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि किसी को बंदूक रखने की इजाजत देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की बेहतर ढंग से जांच को जरूरी बनाने के प्रयासों का अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समर्थन किया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निंग से द्विदलीय विधेयक पर बात की है। इस विधेयक में किसी को भी बंदूक खरीदने की इजाजत देने से पहले की जाने वाली जांच प्रक्रिया को सुधारने का प्रस्ताव रखा गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर कहा कि अभी चर्चा चल रही है और सुधारों पर विचार चल रहा है। हालांकि यह दिखाता है कि समय के साथ गन कंट्रोल पर ट्रंप के नजरिए में बदलाव आया है। अभी वो नियमों में बदलाव को लेकर समर्थन भरा रुख दिखा रहे हैं, लेकिन 2016 में राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान उन्होंने गन कंट्रोल का विरोध किया था। पिछले साल नेशनल राइफल एसोसिएशन के अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि वो हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार में कभी भी दखल नहीं देंगे।
As your president, I will never ever infringe on the right of the people to keep and bear arms. Never ever.
अमेरिका में अगर कोई भी शख्स बंदूक खरीदना चाहता है तो लाइसेंसधारी फेडरल डीलरों को उसकी पृष्ठभूमि की जांच करनी होती है। बंदूक खरीदना चाह रहे लोगों को एक फॉर्म में अपने बारे में जानकारी देनी होती है और बताना होता है कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। इसके बाद इस जानकारी को FBI के नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम को दिया जाता है। इसने पिछले साल ऐसे 2,25,00,000 आवेदनों की जांच की थी, लेकिन इस सिस्टम में कुछ खामियां हैं। इसमें वही जानकारियां दर्ज होती हैं जो किसी शख्स के अपराध में दोषी पाए जाने या उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने पर संघीय अधिकारियों की तरफ से मुहैया करवाई गई होती है। इस प्रणाली की नाकामी उस समय भी सामने आई थी जब अमरीकी एयरफोर्स ने स्वीकार किया था कि टेक्सास में 26 लोगों को मारने वाला शख्स पहले भी घरेलू हिंसा के मामले में दोषी पाया गया था और एयरफोर्स इसकी जानकारी FBI के इस सिस्टम को देने में नाकाम रही थी।
तो मोहम्मद शाहिद बता रहे थे कि फ्लोरिडा की घटना के बाद किस तरह से अमरीका में अब बंदूक रखने के नियमों में सुधार के आसार दिख रहे हैं। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के एक उम्मीदवार की हत्या हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आज मेघालय पहुंच रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री मुकुम संगमा के नेतृत्व में पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना भी करना पड़ रहा है। BBC संवाददाता सलमान रावी मेघालय की राजधानी शिलोंग में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे हैं और कुछ दिन पहले एक उम्मीदवार की हत्या भी हुई है, किस तरह के राजनीतिक हालात हैं वहां पर?
जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की कोई राजनीतिक हत्या हुई हो। NCP के ये जो विधायक हैं जो मारे गए हैं, 2013 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब इन पर हमला हुआ था, लेकिन फिर 5 साल बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो और उसके बाद जीत कर आए तो उन पर कभी हमला नहीं हुआ। इसको लेकर काफी राजनीतिक गर्मी हुई है। BJP ने भी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नलिन कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, UDP जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है उसने मांग की है कि NIA की इंक्वायरी हो इसमें। और इस बीच ये दौरा जो है उसी जगह पर हो रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस की सरकार है, मुकुल संगमा CM है, लेकिन बीच में इधर कुछ दिनों पहले से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके 6 MLA टूटकर वो एक डिप्टी CM और 3 कैबिनेट मिनिस्टर वो अलग अलग दलों में शामिल हो गए जाकर। और यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ा सा अंदरूनी कलह का सामना करते करते थोड़ा घबराई हुई सी है कांग्रेस, क्योंकि रूलिंग पार्टी है उसको अपनी सीटें बचाए रखना है, 29 सीटें हैं हालांकि, और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर उसने बनाया था। तो ये मौजूदा हालात जो हैं वो इसी तरह के हैं कि बीजेपी के लिए तो ये बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, और बीजेपी काफी उत्साहित है क्योंकि काफी होमवर्क किया है
जी।
रीजनल पार्टियों के साथ जो है वो अलायंस बीजेपी ने किया है यहाँ पर, और मतलब एक वैसा समझौता है जो लिखित नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है वो बिल्कुल अकेले पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। सलमान रावी बता रहे थे कि 27 फरवरी को जहां मेघालय में चुनाव होने वाले वहां पे किस तरह के हालात हैं। अभी कुछ ही साल पहले की बात है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आती थी। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में पार्टी का प्रभाव नजर नहीं आता था, लेकिन बीते 4 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अपने पैर फैलाए हैं। इसकी वजह से भाजपा अपने संगठन का विस्तार कर पाई है। सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट।
नजारा ऐसा है मानो जैसे कोई लहर हो। इससे पहले असम को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह का समर्थन कभी देखने को नहीं मिला। ये भीड़ अचानक नहीं उमड़ी है। जानकारों का दावा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने का जो काम किया, ये उसका परिणाम है। असम में जीत दर्ज कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की तो पार्टी के हौसले और बुलंद हो गए, मगर भाजपा पर आरोप लगे कि इस दौरान पार्टी ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस के नेताओं को अपने संगठन में शामिल कर लिया। पार्टी के महासचिव राम माधव कहते हैं कि राजनीति में जोड़ तोड़ तो चलता रहता है।
असम छोड़कर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस लगभग नाके बराबर थी पार्लियामेंट चुनाव तक, बट पार्लियामेंट चुनाव के बाद 2-3 कारणों से हमारा काम अच्छा यहाँ बढ़ा, अच्छा आगे बढ़ा है। एक तो यहाँ कई राज्यों में कांग्रेस या अन्य स्थानीय दलों के, यहाँ पर जैसे त्रिपुरा में CPM के सरकारें लंबे अरसे तक चलते रहे, 10-15 साल चलते रहे, कोई उनको चैलेंज करने वाला था ही नहीं, तो पहली बार BJP एक चैलेंजर के रूप में सामने आई। इसलिए हमने एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग, पॉलिटिकल टैक्टिक्स को भी अच्छा यूज़ किया, तभी का मिला जुला परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट में हम अच्छे स्थिति में हैं।
मेघालय के बाद त्रिपुरा में संगठन के विस्तार की कमान संभालने वाले सुनील देवधर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्हें लगता है कि त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी की तुलना दूसरे राज्यों की कांग्रेस पार्टी से नहीं की जा सकती है।
आप त्रिपुरा की कांग्रेस की तुलना अन्य राज्यों के कांग्रेस के साथ ना करें। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ पर लंबे अरसे तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है। इसी स्थिति में त्रिपुरा की जनता में राष्ट्रवाद तो है, देश को मानने वाले लोग हैं, तो जो जो देश को मानने वाले लोग, नेशनलिस्ट लोग थे, उनके लिए एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस थी।
मगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झूमू सरकार को लगता है कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में पहले कांग्रेस थी वही अब भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गई है।
ये जो लोग कांग्रेस था वही लोग अभी BJP में चला गया। BJP तो 150 रुपया इधर उधर दे रहे हैं गरीब को, 10,000-15,000 पैसे से मानुष गरीब आदमी को खरीदना चाहता है।
ये बात सही है कि चाहे असम में हिमंता बिस्व शर्मा हो या पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का कहना है कि अब कांग्रेस नए युवा चेहरों को पार्टी में शामिल करेगी।
कांग्रेस पहले भी क्या होता है, स्प्लिट होते हैं। आज क्या कांग्रेस गया था? इंदिरा गांधी का काम में कांग्रेस नहीं गया था, वो चल गया। वो तो हमारा हिस्ट्री है, कांग्रेस में भी अपॉर्चुनिटीज है, आएगा जाएगा, लेकिन कांग्रेस नया नया ब्लड आएगा, जितना जाएगा अच्छा है, नया ब्लड आ जाएगा, वो बैड ब्लड चल जाता है।
कभी पूर्वोत्तर भारत की इन पहाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी नहीं सोचा था कि सरकार भी बनेगी, लेकिन जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ वो दरअसल असम के विधानसभा के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस यानी अपनी पैठ के संकेत दिए। लेकिन जानकारों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा काम यहाँ पर RSS करती आ रही है पिछले कई दशकों से, और ये उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना संगठन तैयार करने में मदद मिली है।
भाजपा के राष्ट्रीय नेता यहाँ आते थे, मुद्दे बनाकर चले जाते थे, और ये लगने लगता था कि सब कुछ भाजपा में हो गया, लेकिन वोटर को बूथ तक ले आने का इनके पास आदमी नहीं होता था। तो संघ की इस कार्यशैली की वजह से इनको कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात मिल गई है।
त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के चुनावी नतीजे कुछ भी रहें, मगर बीजेपी ने इनके बहाने 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनावों के लिए अपना होमवर्क तो जरूर कर लिया है। सलमान रावी, BBC, मेघालय।
दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसे सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 दिनों के अंदर दूसरी बार कर्नाटक का दौरा किया और आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर 2 दिन के चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंच रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे में क्या खास है, जानने के लिए सुने बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर का दौरा किए थे और आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तटीय जिलों का दौरा शुरू कर रहे हैं। फर्क यह है कि अमित शाह उस इलाके में अभियान शुरू कर रहे हैं जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगले 2 दिन में उनका एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें वो बहुत कुछ करने वाले हैं। कर्नाटका बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश कुमार कहते हैं, अगले दिनों वो हर बूथ के 8 से 9 कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और नवशक्ति सम्मेलनों में संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो सोशल मीडिया में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे और उनका तीसरा काम ये है कि वो मछुआरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उदयगंतित परेश मेस्ता और दीपक राव के परिवारों से भी मिलेंगे जिनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। ये थे सुरेश कुमार के शब्द। कर्नाटक के तटीय इलाके के 3 जिले दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में 19 क्षेत्र हैं। इन 19 क्षेत्र में 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 और निर्दलीय 3 सीटें जीते थे। तो क्या इसीलिए अमित शाह इन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं? हमने ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक महादेव प्रकाश से पूछा। उन्होंने कहा,
कोस्टल बेल्ट कुरैशी अवरे ट्रेडिशनली दिस इज द स्ट्रांग होल्ड ऑफ बीजेपी।
ये बात तो स्पष्ट है कि यह इलाका बीजेपी का गढ़ है। सारे राज्य में आपको ये दिखाई देगा कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है, लेकिन तटीय इलाके में हिंदू, ओबीसी और दलित वोट बीजेपी के साथ है और कांग्रेस के साथ सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट है। यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है और इसी को मजबूत बनाने के लिए अमित शाह दौरा कर रहे हैं। ये थे महादेव प्रकाश के शब्द। पिछले हफ्ते राहुल गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले हैदराबाद कर्नाटका इलाके में चुनाव अभियान शुरू किया और अगले 2 दिन अमित शाह बीजेपी के गढ़ में अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि चुनावी लड़ाई सिर्फ 1 या 2 इलाकों में नहीं लड़ी जाएगी। इस समय हर सीट पर जबरदस्त लड़ाई होने के संकेत मिल रहे हैं। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
बिहार में अभी पक्ष विपक्ष की राजनीति के शीर्ष पर मौजूद नेता छात्र राजनीति से निकले हैं। इनमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। ये सभी जिस पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते हुए आगे बढ़े, वहां बीते हफ्ते छात्र संघ के चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव पिछले चुनाव यहां पर 2012 में हुए थे और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि 2012 में ये चुनाव 28 साल बाद हुए थे। इन बड़े नेताओं ने पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति को बढ़ावा क्यों नहीं दिया और इसका क्या असर पड़ा, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बीते शनिवार को पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत दर्ज की। बीते 3 दशक से ज्यादा समय में यह महज दूसरा मौका था कि जब पूसू चुनाव हुए। लालू यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वे अगले 15 वर्षों तक लगातार सत्ता के शीर्ष पर रहे। फिर नीतीश 2005 में सत्ता में आए, इसके बाद भी पूसू चुनाव होने में 7 साल का समय लग गया। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद लंबे समय तक चुनाव नहीं होने की ये वजहें मानते हैं।
90 के बाद जब लालू यादव पावर में आए तब उस जमाने में पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मंडल मंदिर सब शुरू हो गया था। तो एक वजह हो सकती है, एक्सक्यूज हो सकता है कि इलेक्शन ना कराया जाए। दूसरी वजह कि ये सभी लोग जान रहे थे कि 74 मूवमेंट जो था वो स्टूडेंटिंग मूवमेंट का था और वो एक बड़ी लीडरशिप दिया इंडिया को, बिहार को, एक चैलेंज करने की हैसियत रखी उस जमाने की सरकार को। तो वो पोटेंशियल उसमें पा रहे थे, उनको लेट मैंने एक फियर था, एक खतरा था अंदर में कि भाई ये होगा तो नहीं होने दिया जाए।
पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डेजी नारायण भी सुरूर अहमद की बातों से इत्तेफाक रखती हैं। साथ ही वह इसके लिए इस दौर में तेजी से हुए शिक्षा के व्यवसायीकरण को भी जिम्मेदार मानती हैं।
वो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर आया, इंस्टीट्यूशंस का जो दौर आया, उसी तरह से कोशिश की गई कि ओल्ड यूनिवर्सिटीज को अगर इम्प्रूव करना है तो उसका अनुकरण करना चाहिए। ये जो फैकल्टीज में लड़के चले जाते हैं, इन फैकल्टीज के लड़के ये जानते हैं कि उनको उनके पेरेंट्स ने अधिक पैसा देकर उनको भेजा है यहाँ पर, और वे सामान्य स्टूडेंट से अलग हैं, तो वो कटने लगते हैं इस पूरे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से। वो पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो मार्केट है, उनके लिए रोजगार है। और पॉलिटिक्स जैसे चीज़ें ये हिस्ट्री के लोग या बाकी सामान्य जो सोशल साइंसेज के लोग हैं या साइंस के भी छात्र हैं, वो लोग करते चले जाएं।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही। यहाँ के छात्र रहे चक्रवर्ती अशोक प्रदर्शी भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और वे 80 के दशक में जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाए गए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के बिहार संयोजक भी रहे। अशोक के मुताबिक संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद ही चुनाव के बावजूद संघों की धमक कम होती चली गई, फिर लंबे समय तक चुनाव नहीं हुए या नियमित चुनाव नहीं हो रहे। वे इस सब का नुकसान इस रूप में देखते हैं।
जो बिगड़ गई थी चीजें उनको देखना, उनको बनाना, उनको पॉइंट आउट करना, तो स्टूडेंट्स यूनियन इनकी रखवाली करता है, उनके पास एजेंडा है। तो पटना यूनिवर्सिटी ने अपने को कई कारणों से गिराया, उसमें से एक ये भी है कि उसने यूनियन को गिराया, और यूनियन जब खत्म हो गया तो यूनियन जो यूनिवर्सिटी को बनाने में काम कर सकता था वो, तो इसमें वाइस वर्सा है।
वहीं डेजी नारायण का मानना है कि नियमित चुनाव नहीं होने से खालीपन पैदा हुआ है। ऐसे छात्र अब कम निकलकर सामने आ रहे हैं जो गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श करते हों। नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों की प्रतिनिधि आवाज गुम हो जाती है, यूनिवर्सिटी की नींव कमजोर होती है। मनीष चांडिल्ली, BBC पटना।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। शाहिद काफी देर से अखबारों को उलट पलट रहे हैं, बताएं।
जी, आदर्श और जो आजकल चल रहा है लगातार घोटाले को ऊपर, तो उसी को ही हर अखबार ने अपनी पहली खबर बनाई है। और रोटोमैक कंपनी के जो मालिक हैं विक्रम कोठारी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर हिंदुस्तान ने लीड बनाई है। पैन किंग ने लगाया 37 अरब रुपए की चपत। इसके अलावा क्या कहते हैं, नीरव मोदी की चिट्ठी का जिक्र हर अखबार ने छापा है जो उन्होंने PNB को लिखी है। दैनिक भास्कर हेडिंग देता है, बैंक की जल्दबाजी ने मेरा धंधा चौपट कर दिया, नहीं लौटा सकता बकाया। और हिंदुस्तान ने भी इसी को आधार बना के लिखा है, नीरव मोदी का कर्ज चुकाने से इनकार। और दूसरी चीज़, इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय दौरे पर हैं, तो दैनिक भास्कर में ही उनकी कल साबरमती आश्रम की तस्वीर छपी है जिसमें वो भारतीय परिधान में अपने परिवार के साथ हैं। और उस पर दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार परिवार के साथ साबरमती आश्रम पहुंचे कनाडाई PM, चरखा चलाया, लिखा ये बहुत सुंदर जगह है। इसी को ही आधार बना के हिंदुस्तान टाइम्स अंदर के पन्नों पे लिखता है, जिसमें ये है कि वेटरन डिप्लोमेट्स जो हैं वो मानते हैं कि ट्रूडो के इस शेड्यूल पे सवाल उठाते हुए कहते हैं कि उनके दौरे में जो है ऑफिशियल एंगेजमेंट बहुत कम है। यानी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की अब तक मुलाकात भी नहीं हुई है उनकी, तो उन्होंने इसको आधार बनाया है,
निजी कार्यक्रम ज़्यादा रहे।
हाँ,
अभी तक
कह रहे हैं कि इसमें कम मुलाकात हो रही है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में जो है एक खबर है कि जो धोखाधड़ी हुई बैंकों को लेकर, तो उसको लेकर RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आगाह किया था कि वहाँ पर भी उनके साथ घोटाला हो सकता है।
जी,
ये एक्सप्रेस पे खबर है।
बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले झारखंड के ताना भगतों की जमीन का लगान झारखंड सरकार ने माफ कर दिया है। लगान माफी को लेकर ताना भगतों ने 63 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। बेहद सरल सहज जिंदगी जीने वाले आदिवासी समुदाय के ताना भगत अपने पुरखों के साथ तिरंगे की पूजा करते हैं और वे गांधी के अनुयायी भी हैं। ताना भगतों के गाँव से सुनिए नीरज सिन्हा की ये रिपोर्ट।
ताना भक्तों का एक गांव खक्सी टोली, रांची का सुदूर इलाका,
और पहाड़ों जंगलों से घिरा हुआ। सुबह 10 बजे हम इस गांव में पहुंचे थे। मुलाकात कुछ बच्चों से होती है। उन्होंने बताया कि जतरा टाना भगत की मूर्ति के पास बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, वहां चले जाइए। आगे बढ़ते ही प्रार्थना की आवाज सुनाई पड़ती है। सुका टाना भगत बताने लगे कि जतरा टाना जैसे वीर योद्धा हमारे दिलों में बसते हैं। गांव में हर रोज तिरंगा के साथ इन्हें भी पूजा जाता है। सरकार ने टानो भक्तों का लगान माफ कर दिया है। माफी की यह राशि 61 लाख रुपये है। अब सरकार टोकन के तौर पर सिर्फ 1 रुपये का शेष लेगी। इसके अलावा टाना विकास प्राधिकार का भी गठन किया गया है। यह जानकारी देने के साथ सुका टाना से हमने पूछा, आखिर लगान क्यों नहीं देते रहे और इसके लिए लंबी लड़ाई हुई कैसे?
तो लगान मतलब यह होला कि अंग्रेज यहाँ से चला जा, राजा महाराज यहाँ से चला जा कि हम तोके टैक्स नहीं दे, हमार धरती पर थी, हम तोके टैक्स नहीं दे।
स्थानीय लहजे में उनका जवाब था, धरती हमारी, अंग्रेजों जमींदारों को भगाया हमने, तब किसी सूरत में टैक्स नहीं भरा और अब अपना राज, तो फिर लगान कैसा? बुजुर्ग मंगरा टाना भगत आदिवासी भाषा में बताने लगे कि माफी का कागजात मिलने तक वे इंतजार करेंगे, क्योंकि पहले भी सरकारी अफसर बाबू कई किस्म के भरोसा दिलाते रहे हैं। सरकार के रुख पर टाना भगत तंज भी कसते हैं। सुने ये तो टाना भगत को,
कुछ नहीं है, हम लोग को लुलियाता भर है टाना भक्तों के लिए। जो समय मीटिंग रहेगा उसी समय समूह तब पांचों जिला के टाना भक्तों को जुमाएगा और कहेगा कि नहीं फलना चीज काट देंगे, चिलना चीज काट देंगे। अभी तुके लिए कुछ नहीं कर रहा है, यह इन साल फिर थोड़ा सा खाता पुस्ता दिया है, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ कर देंगे तो नहीं कहता है, गुमराह में टाना भक्तों को रखता है।
गाँव के युवा जीतू टाना भगत बीए में पढ़ते हैं। रोजगार का सवाल युवाओं को डराता है, डर और भी है।
हम लोग का तो अभी कास्ट लगेगा जो कि जितना टाना भगत सब लड़ाई किए वो केवल इतिहास बन के ही रह जाएगा ऐसा लगता है। अभी तक कुछ काम नहीं किया है सरकार ने हम लोग के लिए।
यही वजह हो सकती है कि टाना भगत यह कहने से गुरेज नहीं करते कि उनकी लड़ाई अभी बाकी है, नीलाम की गई जमीन वापसी की और आखिरी कतार से बाहर निकलने की। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही T20 मुकाबलों की सीरीज में इस श्रृंखला का अगला T20 मुकाबला होगा सेंचुरियन में 21 फरवरी को। इसी श्रृंखला में भारत के महेंद्र सिंह धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। टेस्ट श्रृंखला में हार का सामना करने के बाद अच्छी वापसी की भारतीय क्रिकेट टीम ने। क्या स्ट्रेटेजी रही भारतीय क्रिकेट टीम की, उस पर बात की भारत के भुवनेश्वर कुमार ने।
जैसा हर मैच में जाने से पहले ट्राई करते हैं, स्ट्रेटेजी होती है कि दैट बेसिक थिंग, लाइन स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, थोड़ा बैकवर्ड फ्लैंक करेंगे, वही सब चीज़ थी। बट जरूरी होता है कि आप कैसे मिक्सअप करते हैं उसे विकेट के अकॉर्डिंगली, यू नो दैट लाइन लेंथ के अलावा एक चीज़ होती है कि आप क्या मिक्स करना चाहते हैं, तो वो एक चीज़ मैटर करती है।
तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस श्रृंखला का अगला T20 मुकाबला होगा सेंचुरियन में 21 फरवरी को। वहीं 21 फरवरी को ही न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुई ट्राई सीरीज का फाइनल्स का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ये मुकाबला होगा ऑकलैंड में। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गन कंट्रोल कानून में सुधार पर अपना समर्थन जताया है। सीरिया के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि दमिश्क के बाहर पूर्वी गूटा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बीते 24 घंटे में सरकार के हमलों में दर्जनों नागरिकों की मौत हुई है। तुर्की के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर सीमाई प्रांत एफरिन में सीरियाई सरकार के सुरक्षा बल दाखिल होते हैं तो ये भयंकर घटना होगी। इसराइली सरकार ने कहा है कि उसने मिस्र के साथ अरबों डॉलर की गैस डील की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि राजधानी तेहरान में दरवेश समुदाय के प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। ईरानी समाचार एजेंसी फास का कहना है कि गोनाबादी दरवेश समुदाय के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर बस चढ़ा दी गई थी। रूसी माफिया गैंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में रूसी सांसद व्लादिस्लाव रेज़निक समेत 18 संदिग्धों के खिलाफ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में केस शुरू हुआ है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।